आज की श्रीमद् भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। और भगवान के कथा श्रीमद् भागवत का श्रवण कीर्तन करने का सौभाग्य देने के लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं और आशीर्वाद मांगता हूं कि भगवान का गुण कीर्तन कर सकूं और हृदय को शुद्ध कर सकूं। कृपया आशीर्वाद दीजिए। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 25 अध्याय के 55 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। कृपया मेरे पीछे दोहराने का प्रयास कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। स यर्हि अन्तःपुरगतो, स यर्हि अन्तःपुरगतो विशुचीना समन्विता, विशुचीना समन्विता मोहं प्रसादं हर्षं वा, मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जाया आत्मजा उद्भवम्, याति जाया आत्मजोद्भवम्। स यर्यन्तःपुरगतो विशुचीना समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्। थोड़ा ये पुरगतो विशुचीना समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा माताजी। स यर्यन्तःपुरगतो विशुचीना समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजोद्भवम्। स यर्यन्तःपुरगतो विशुचीना समन्वितः मोहं प्रसादं हर्षं वा याति जायात्मजो सह वह यर्हि जब अंतापुर अपने निवास में गतः जाता था विशुचिना मन के समन्वितः सहित मोहम मोह प्रसादम संतोष हर्षम हर्ष वा अथवा याति अनुभव करता था जाया पत्नी आत्मजा पुत्र उद्भवम से उत्पन्न। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी महाराज द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद, कभी कभी वह अपने एक मुख्य दास मन विशुचिन के साथ अपने अंतःपुर जाया करता था। उस समय उसकी पत्नी तथा पुत्रों से मोह संतोष तथा हर्ष उत्पन्न होते थे। तात्पर्य, वैदिक मत के अनुसार आत्मा तो हृदय के भीतर स्थित है। जैसा कि वैदिक भाषा में कहा गया है, हृदयम आत्मा प्रतिष्ठितः। आत्मा तो अपने अंतःकरण में है, किंतु भौतिक अवस्था में आत्मा भौतिक गुणों रजो सतो और तमोगुणों से ढका रहता है और हृदय के भीतर ये तीनों गुण क्रिया करते हैं। उदाहरणार्थ, सतोगुण में रहने पर प्रसन्नता का अनुभव होता है, रजोगुण होने पर भौतिक सुख के कारण संतोष मिलता है और तमोगुण के कारण मोह उत्पन्न होता है। ये सारे कार्य मन के हैं और ये सोचने अनुभव करने तथा इच्छा के द्वारा क्रियाशील होते हैं। जब जीव अपनी पत्नी संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी वह प्रसन्न रहता है तो कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट रहता है तो कभी मोहग्रस्त हो जाता है। समाज मित्रता तथा प्रेम से मोहग्रस्त होकर जीव यह सोचता है कि उसके तथा कथित समाज मित्रता तथा प्रेम राष्ट्रीयता जाति इत्यादि उसे संरक्षण प्रदान करेंगे। उसे यह पता ही नहीं रहता कि मृत्यु के पश्चात वह प्रबल प्रकृति के हाथों में फेंक दिया जाएगा, जो उसे वर्तमान कार्य के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर प्रदान करेगी। हो सकता है कि यह शरीर मनुष्य का ना भी हो। इस प्रकार समाज स्त्री तथा मित्रता के मध्य जीव के सुरक्षित बने रहने का विचार मात्र मोह ही है। विभिन्न भौतिक शरीरों में बद्ध सभी देहधारी जीव वर्तमान भौतिक सुख के कार्यों द्वारा मोहग्रस्त रहते हैं। वे अपना मुख्य कार्य जो भगवान के धाम को वापस जाने का है भूल जाते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है मोहग्रस्त समझना चाहिए। भौतिक वस्तुओं से उसे जो तथा कथित हर्ष तथा संतोष प्राप्त होता है उसे भी मोह ही समझना चाहिए। वास्तव में मनुष्य को समाज मित्रता प्रेम या अन्य कोई माया के आक्रमण से नहीं बचा सकता, जो जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग के रूप में होता रहता है। इस मोहावस्था से एक भी जीव को निकाल पाना कठिन है। अतः भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्तिते। यह मेरी दैवी माया तीन गुणों से युक्त है और इसे जीत पाना कठिन है, किंतु जो मेरी शरण ग्रहण कर चुके हैं वे इसे सरलता से पार कर सकते हैं। अतः जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक वह प्रकृति के तीन गुणों के बंधन से निकल नहीं पाता। होमज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। यहां पर जो पुरंजन की संवाद के माध्यम से सभी जीवात्माओं की कार्यकलापों का वर्णन किया गया है, वहां पर अभी ये बताया गया है कि किस प्रकार जीवात्मा अपने मन के प्रभाव से अलग अलग प्रकार की भावनाओं से गुजरता है। तो यहाँ बताया गया कि उदाहरण स्वरूप कि वह पुरंजन राजा अपने मुख्य दास विशुचिन अर्थात मन के साथ वह अपने निवास में जाता है और वहाँ पर उसे उसकी पत्नी और पुत्रों से मोह संतोष और हर्ष प्राप्त होते हैं। कभी जीव मोहित होता है, कभी बहुत आनंदित होता है और कभी वो बहुत संतुष्ट होता है और कभी बहुत विचलित होता है। तो ये अलग अलग प्रकार की मन की स्थितियां हैं, ये बताई गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आत्मा हृदय के भीतर स्थित है। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि शरीर मन और आत्मा में भेद है। ये हमारे वैदिक ज्ञान की पहली सीढ़ी है। भगवद गीता में भगवान सर्वप्रथम यही ज्ञान दे रहे हैं, आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं भगवान। तो भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं क्या, ईश्वर सर्वभूतानाम हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो आत्मा सबके हृदय में स्थित है और साथ में भगवान भी परमात्मा रूप में हम सबके हृदय में ही विराजमान है। लेकिन इस संसार में जीवात्मा जब बंध गया है तो क्या हो रहा है, भगवान यहां बता रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, कि भ्रामयन शब्द का अर्थ है भ्रमण करवाते हैं, यंत्रारूढ़ानि शब्द का अर्थ है कि यंत्र पर सवार। जैसे हम ये शरीर है ये एक यंत्र है और आत्मा उस पर एक सवारी के रूप में सवार है। आत्मा शरीर रूपी यंत्र में सवार होकर पूरे सृष्टि में असंख्य शरीरों में भ्रमण कर रही है, ये देहांतरण का विज्ञान चल रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं कि भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये माया द्वारा, माया यानी भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा निर्मित ये यंत्र है जिसमें जीवात्मा बैठकर भ्रमण कर रहा है। तो ये भ्रमण जन्म जन्मांतर से चलता जा रहा है, असंख्य असंख्य शरीरों में ये भ्रमण चल रहा है। तो इससे सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि आत्मा स्वतंत्र नहीं है, जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है। हम सभी जीव हैं परंतु हम अपनी स्वेच्छा से कार्य नहीं कर सकते हैं। इसीलिए भगवान ने यहाँ ये बताया कि भ्रामयन यानी भ्रमण करवाते हैं, भगवान भ्रमण करवाते हैं, भगवान आत्मा को भ्रमण करवाते हैं। तो क्यों भ्रमण करवाते हैं, क्योंकि जीवात्मा चाहती है भ्रमण करना। जैसी आत्मा की इच्छा होती, जीव की इच्छा होती है उसके अनुसार उसे अलग अलग प्रकार का यंत्र प्रदान कर दिया जाता है और भ्रमण करने की सुविधा प्रदान कर दी जाती है। तो यही अवस्था है बद्ध जीवन की, यानी हम सब बद्ध अवस्था में है। ये हमारी रुग्ण अवस्था है, यानी बीमारी की अवस्था है। हम लोग स्वस्थ रूप में नहीं है। जीवात्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वो है भगवान की सेवा करना। इसीलिए बताया गया मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। बद्ध अवस्था में जीवात्मा स्वतंत्रता से कार्य नहीं कर सकता है, और मुक्त अवस्था में जीव अपनी वास्तविक स्थिति में होता है। तो मुक्ति है क्या? तो मुक्ति की परिभाषा शास्त्र बता रहे हैं, आचार्य बता रहे हैं कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपेण स्वरूपेण व्यवस्थिति। अभी हम अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं है, हम एक प्रकार का शरीर धारण किए हैं अपनी इच्छा के अनुसार, पुरानी इच्छाओं के कारण, पुरानी भावनाओं के कारण ये शरीर हमें प्रदान किया गया है प्रकृति द्वारा। और जिस प्रकार की भावनाएं इच्छाएं हम इस जीवन में कर रहे हैं उसके अनुसार हमें अगला शरीर प्राप्त होगा। यही प्रकृति के तीन गुणों का प्रभाव है। तो भगवद गीता में अर्जुन भगवान के पास कुछ जिज्ञासा कर रहे हैं, भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये वास्तविक मार्ग है, क्योंकि एक बद्ध जीव जो है वो वास्तविक में ज्ञाता नहीं है। जीव जो है वास्तविक ज्ञान में स्थित नहीं है। इसीलिए अर्जुन भी एक जीव का अभिनय कर रहे हैं, एक बद्ध जीव का अभिनय करके हमें सिखा रहे हैं। तो अर्जुन युद्ध करने या ना करने का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में युद्ध करने या ना करने का निर्णय उनकी सीमित विचार क्षमता पर आधारित था। जब अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सगे संबंधियों को देखा तो अर्जुन मोहित हो गया, और अर्जुन ये निर्णय कर लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो अर्जुन जैसे ही युद्ध भूमि में आ रहे हैं भगवान कृष्ण के साथ, और जैसे ही वो अपने संबंधियों को देखते हैं तो विमोहित होते हैं, और भगवान को बोलते हैं कि दृष्टवे मम स्वजनम कृष्ण युत्सुम समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। तो अर्जुन बता रहे हैं कि हे कृष्ण, अपने स्वजनों को युद्ध भूमि में सामने देखकर मैं विमोहित हो रहा हूं। अर्जुन इतने महान योद्धा हैं लेकिन वो मोहित हो गए हैं। तो वास्तव में ये हमें शिक्षा देने के लिए है। और अर्जुन आगे बोल रहे हैं कि यदि माम अप्रतिकारम शस्त्रम अशस्त्रम शस्त्रपाणय धातराष्ट्रारणे हन्यु तन्मे क्षेमतरम भवेत। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि मैं अपने स्वजनों का प्रतिकार नहीं करूंगा, उनसे बदले में युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मुझे निहत्था देखकर वो मेरा वध भी कर दें तब भी मैं उनका वध नहीं करूंगा, क्योंकि वो सब मेरे स्वजन हैं, मेरे आत्मजन हैं। तो ये वास्तव में एक दया भावना है अर्जुन के मन में, जो एक भक्त का लक्षण है। एक भक्त के मन में स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के प्रति दया भावना होती है। एक जीव कभी भी हिंसा नहीं करना चाहता। एक भक्त जो है वो कभी भी दूसरों के प्रति, दूसरे जीवों के प्रति हिंसा नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि वो सभी जीवों का भगवान से वास्तविक संबंध जानता है। वो जानता है कि सभी जीव भगवान कृष्ण से संबंधित हैं। लेकिन यहां जो अर्जुन का मोह है वो दया भावना है, लेकिन उसे अपने कर्तव्य का बोध नहीं हो रहा है। अर्जुन एक क्षत्रिय है, और क्षत्रिय होने के नाते उसे अपना कर्तव्य करना है। ये वास्तविक जो शरीर से संबंधित मनोभाव से जो मोह है वो वास्तविक स्थिति नहीं है। वास्तविक ज्ञान की स्थिति है जब हम भगवान से सभी जीवों के संबंध को जानकर, अपने संबंध को जानकर अपना कर्म करें। तो ये कार्य भगवान चाहते हैं। इसीलिए सबसे पहले भगवान जो है वो मनोधर्म का खंडन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि मन के प्रभाव में जीवात्मा कभी मोह, कभी संतोष और कभी हर्ष का अनुभव करती है। तो तीन गुणों के प्रभाव में हम लोग अलग अलग प्रकार की मनोभावनाओं से गुजर रहे हैं, और वो मनोभावनाएं कैसी, कहाँ से आ रही हैं? वो मनोभावनाएं जो है वो देहात्म बुद्धि से आ रही हैं। हम लोग अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और शरीर से संबंधित जो वस्तुएं हैं और परिवेश है उसमें आत्मबुद्धि करने के कारण हम लोग मोहग्रस्त हो रहे हैं, और उससे प्राप्त सुख दुख और अलग अलग परिस्थितियों से हम अपने आप को संबंधित मान रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण अर्जुन के इस मोह का खंडन करते हैं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं अनारे जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम चार्जुन। कि हे अर्जुन, ये जो तुम बात कर रहे हो ये आर्यों को शोभा नहीं देती है। तो वास्तव में आर्य और अनार्य का अंतर क्या है, तो भगवान यहां बता रहे हैं। आर्य अर्थात जो जीवन के लक्ष्य को जानते हैं, तो हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान से अपने संबंध को जगाना, तो उसे जानना जरूरी है। इसीलिए भगवान अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और अर्जुन भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। भगवान तब तक अर्जुन को शासन नहीं करते हैं जब तक अर्जुन भगवान का शासन स्वीकार नहीं करना चाहता। उसी प्रकार हम सभी जीव इस संसार में स्वतंत्र हैं, अपनी स्वेच्छा से सब कार्य कर रहे हैं। अपनी इच्छा के कारण ही हम अलग अलग प्रकार की जीवन में अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। लेकिन वास्तविक ज्ञान है जब हम भगवान से अपने संबंध को जगाएं और उस दिशा में हम कार्य करें, तो इसके लिए हमें शरणागति की आवश्यकता है। तो यहां पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सभी जीव जो हैं वो मोहग्रस्त हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावना भावित नहीं है मोहग्रस्त समझना चाहिए। जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो जीव वास्तव में मोहग्रस्त ही है। और प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि जब तक मनुष्य श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक वह प्रकृति के तीन गुणों के बंधन से निकल नहीं पाता। तो ये जो मोह की स्थिति है इससे निकलना इतना सरल नहीं है। इससे निकलने का एकमात्र उपाय है भगवान कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। तो यहां भगवान सभी जीवों को ये अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जीव जिस प्रकार की इच्छा करते हैं भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करते हैं। भगवान हमारी इच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो ये हमारी अपनी ही स्वेच्छा है कि हम भगवान की शरण ग्रहण करें। भगवान उसके लिए जबरदस्ती नहीं करते हैं, लेकिन भगवान हमें सुअवसर प्रदान करते हैं। तो अभी जैसे हमें भगवान के धाम में वृंदावन धाम में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है, यहाँ रह के भगवान की कथा भगवान के कीर्तन का श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, तो ये भगवान हमें सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। तो हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। तो इसका उपाय है कि हम प्रमाणिक गुरु के माध्यम से भगवान की शरणागति करें। इसीलिए यहाँ पर जो बताया गया कि मोहग्रस्त जीव अपनी स्थिति को नहीं समझ पाता है। जब जीव अपनी पत्नी संतान तथा घर से घिरा होता है तो वह मानसिक धरातल पर कार्य करता है। कभी वह प्रसन्न रहता है, कभी संतुष्ट, कभी असंतुष्ट और कभी मोहग्रस्त। तो श्रीमद् भागवतम में दूसरे स्कंद में एक श्लोक है जिसमें इस स्थिति का वर्णन किया गया है। तो वो श्लोक ऐसे है, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनेषु असत्स्वपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। जब जीव देह यानी शरीर, अपत्य अर्थात संतान, कलत्र अर्थात स्त्री पत्नी, आदिषु इन सब में आत्मसैनेषु इन सबको आत्मसैन्य मानता है, वो समझता है कि ये सब मेरी रक्षा कर लेंगे, लेकिन वास्तव में ये क्या है, असत सु, ये असत है। तो इस स्थिति में तेषां प्रमत्तो निधनम पश्यन अपि न पश्यति। तो इस प्रकार की मनोस्थिति में जो जीव प्रमत्त हो गया है, प्रमत्त यानी बहुत पूर्ण रूप से आसक्त, इस प्रमत्त शब्द का यहां प्रभुपाद अर्थ बता रहे हैं आसक्त, बहुत आसक्त हो गया, तो वह तेषां निधनम पश्यन अपि न पश्यति, वह देखकर भी नहीं देखता कि ये सब उनकी रक्षा नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद एक जगह उदाहरण देते हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी वो अभी नहीं रहे, उनका निधन हो गया, शरीर त्याग हो गया, और जितने भी हमारे संबंधी हैं क्रमशः वो भी देहांतरण कर रहे हैं, शरीर त्याग कर रहे हैं, मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। और ये शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है जिससे हम सुख की योजनाएं बना रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, एक दिन ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, ये हम देख रहे हैं लेकिन देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसा क्यों होता है, हम देखते हुए भी क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तो उसका एक कारण है प्रमत्तता। ये जो आसक्ति है, दृढ़ आसक्ति, उसके कारण से हम ये नहीं जान पा रहे कि हमें क्या करना चाहिए। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, इसलिए बताया गया कि जो इस स्वयं को देह मानकर देह के सुखों में पूर्ण रूप से आसक्त हो जाते हैं, वो अवश्य रूप से, निश्चित रूप से वो पाप कर्म करते हैं, उससे हम बच नहीं सकते हैं। तो वो उससे बचने का एकमात्र उपाय है हम भगवान की शरण ग्रहण करें। तो यहां पर ये बताया गया कि जो ये भौतिक आसक्ति है, जो इस संसार में जो हमारी आसक्ति बन गई है, उससे हम अपने प्रयास से मुक्त नहीं हो सकते हैं। जैसे हम बंधन में बंधे हुए हैं, तो अपने आप से हम अपने आप को बंधन मुक्त नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कोई जो मुक्त व्यक्ति है वो हमें बंधन मुक्त कर सकता है। तो वो बंधन मुक्त हमें केवल भगवान के जो शुद्ध प्रतिनिधि हैं, सद्गुरु, वही कर सकते हैं। तो ऐसा उदाहरण दिया गया है कि जो गुरु हैं, जो सद्गुरु हैं, वो अपने ज्ञान की, अपने शासन की कुल्हाड़ी से हमारे जो आसक्ति का बंधन है उसे काटते हैं। तो उसमें बहुत कष्ट होता है। तो हम लोग वास्तव में शासन स्वीकार नहीं करना चाहते, हम लोग स्वेच्छा से कार्य करना चाहते हैं। यहाँ तक कि आध्यात्मिक जीवन में भी हम आते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी स्वेच्छा से, अपने तरीके से भक्ति कर लें, लेकिन ऐसा नहीं है। भक्ति करने का मार्ग हमें सद्गुरु से प्राप्त करना चाहिए, गुरु के मार्गदर्शन में ही हम भक्ति कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से हमें गुरु मार्गदर्शन देते हैं, उसके अनुसार ही हमें कार्य करना चाहिए, तभी हम ये जो भौतिक आसक्ति का जो बंधन है इससे मुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें वास्तव में विवेक की आवश्यकता है। हम लोग बहुत कुछ सुनते हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं शास्त्र पढ़ के, लेकिन हम उस पर आचरण कर नहीं पाते हैं। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका कारण ये है कि हम वो विवेक जागृत नहीं कर पाते। तो इसीलिए हमें भगवान के शुद्ध भक्तों से मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। तो इसी तात्पर्य से संबंधित प्रभुपाद जी के कुछ कविता है जो प्रभुपाद जी ने यहाँ वृंदावन में रहकर लिखी थी, इसे थोड़ा पढ़ने से हम समझ पाएंगे किस प्रकार ये विवेक हम जागृत कर सकते हैं। जब प्रभुपाद जी संन्यास लेकर वृंदावन में रहते थे यहाँ, तो प्रभुपाद जी ने एक कविता लिखी थी, वृंदावन भजन। तो उस कविता में प्रभुपाद बहुत सुंदर ढंग से इसी मनोस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जिससे जीवात्मा गुजरता है। तो प्रभुपाद सबसे पहले यहां बता रहे हैं कि श्री वृंदावन धाम में मैं अकेला ही बैठा हूं, चिंतन के मनोभाव में मुझे अनेक अनुभूतियां हो रही हैं। तो प्रभुपाद यहां पर संन्यास ग्रहण करके भजन कर रहे हैं और चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन में प्रभुपाद अनेक अनुभूतियां अनुभव कर रहे हैं, जिन अनुभूतियों को सुनने से हम उसकी एक झलक अपने अंदर जागृत कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यद्यपि मेरे पत्नी, पुत्र, पुत्रियां तथा नाती पोती, नाती पोते आदि सब हैं, परंतु वे मुझे पूर्ण रूप से एक असफल व्यक्ति मानते हैं, क्योंकि अब मेरे पास कोई धन नहीं है। हे श्री कृष्ण, आपने मुझे इस भौतिक संसार का वास्तविक रूप दिखा दिया है। आपकी कृपा शक्ति के प्रभाव से ही मैं आज सबसे अनासक्त हो गया हूं। तो ये जो भौतिक आसक्ति है, इसका त्याग केवल भगवान की कृपा से ही हो सकता है, इससे मुक्ति भगवान की कृपा से ही हो सकती है। तो आगे प्रभुपाद जी भागवतम के उस श्लोक का वर्णन करते हैं, यस्याहम अनुगृणामि हरिष्ये तद्धनं शनैः। भगवान भागवतम में बता रहे हैं कि जिन पर मैं विशेष कृपा करता हूं, उनका भौतिक धन संपत्ति मैं धीरे धीरे छीन लेता हूं। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हे कृपा मैं भगवान, आपकी इस विशेष कृपा को मैं किस प्रकार समझूं? तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि मुझे धन संपत्ति विहीन देखकर मेरे परिवारजनों, संबंधियों तथा तथाकथित मित्रों ने मेरा त्याग कर दिया है। यह वास्तव में दुखमय स्थिति है, परंतु यह मुझे अत्यंत हंसी प्रदान कर रही है। मैं एकांत में बैठकर हंस रहा हूं, माया के संसार में मेरे प्रियजन वास्तव में कौन हैं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मेरे माता पिता और स्नेहमय परिवारजन कहाँ चले गए और मेरे बड़े तथा अन्य सगे संबंधी कहाँ चले गए जिन्हें मैं अपने स्वजन मानता था। मुझे यह बताओ कि उनका समाचार अब मुझे कौन देगा, जिसे मैं अपना एक संसार समझता था अब केवल उसकी नामों की एक सूची ही रह गई है। तो ये जीवन की वास्तविक सच्चाई है जो प्रभुपाद जी हमारे साथ शेयर हमें बता रहे हैं, हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि हम इस भौतिक संसार में अलग अनेक प्रकार के संबंधों में जुड़ जाते हैं। इस शरीर में हम जो संबंध प्राप्त कर रहे हैं हम उन्हें अपना मानते हैं और उनसे आसक्त होकर हम पूरी तरह से अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाते हैं। लेकिन ये सब अनित्य है। जो संबंध जिन्हें हम अपना मानते हैं वास्तव में हमेशा नहीं रहते हैं। जो हमारे पूर्व में संबंधी थे वो अब नहीं रहे, हम देख सकते हैं, और अभी जो हम संबंधी देखते हैं वो भी क्रमानुसार समय अनुसार अलग हो जाते हैं। तो ये संबंध जो है वो नित्य नहीं है। वास्तविक संबंध जो है वो भगवान से है। तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जिस प्रकार समुद्र के जल में झाग एक क्षण में उत्पन्न होती है और दूसरे क्षण धुल जाती है, उसी प्रकार का खेल माया के संसार में होता है। वास्तव में कोई भी किसी के माता पिता परिवारजन या सगे संबंधी नहीं है। ये सभी समुद्र के फेन की भांति थोड़े समय के लिए ही रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र में झाग बनती है और वो थोड़े समय ही रहती है, उसके बाद दूर हो जाती है, उसी प्रकार इस संसार में जितने भी संबंध सगे संबंध हमें प्राप्त हो रहे हैं ये थोड़े समय के लिए उसके बाद अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र का फेन फिर से समुद्र में ही मिल जाता है, उसी प्रकार यह पांच भूतों से बना हुआ शरीर भी मृत्यु के पश्चात इन्हीं पांच भूतों में मिल जाता है। इस प्रकार आत्मा न जाने कितने शरीर धारण करती है और मात्र इन अनित्य शरीरों को ही अपने स्वजन बंधु मान लेती है। तो ये तो हो गया जीवन की अनित्यता का ज्ञान। तो वास्तविक ज्ञान क्या है? तो आगे प्रभुपाद जी नित्य आध्यात्मिक संबंध बता रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत नेगेटिव है ये सब कि ये शरीर हमारा नहीं है, ये सगे संबंधी हमारे नहीं है, माता पिता पति पत्नी ये संतान ये सब संबंध अनित्य है, ये सब नेगेटिव विचार है। तो वास्तव में पॉजिटिव क्या, वास्तव में सकारात्मक विचार क्या है? लेकिन हम तो इस संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, तो माता पिता हैं, सगे संबंधी हैं, तो उनके प्रति किस प्रकार का मनोभाव रखना चाहिए? ऐसा नहीं है कि कोई हमारा नहीं है, हम आत्मा है, तो इस कारण से हम सबका त्याग कर दें या सबसे मुख मोड़ लें, ये ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान क्या है, हमें किस दृष्टिकोण से देखना चाहिए ये हमें जानना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि हे भाई, आत्मा के आध्यात्मिक स्तर पर ही वास्तव में सभी जीवों का आपसी आत्मीय संबंध है। माया के प्रभाव के कारण ये तथाकथित संबंध वास्तविक संबंध नहीं है। तो जो कृष्ण से संबंध है वो सभी जीवों का है, हम सभी कृष्ण के अंश हैं, इस कारण से हम सबका आपस में संबंध है। लेकिन माया के वशीभूत होके हम आपस में एक दूसरे को जो अपना मान रहे हैं और अपने वास्तविक कल्याण को भूल रहे हैं, वो उस प्रकार के ये माया के संबंध भाव की यहाँ पर भर्त्सना की गई है। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं समस्त जीवों की आत्मा के समान हैं। उनसे संबंधित होने के कारण संसार के सभी जीव आपस में समान हैं। भगवान से हम सभी जीवों का संबंध है, इस कारण से सभी जीव आपस में संबंधित हैं। हे भाई, जितने भी असंख्य कोटि जीव हैं ये सभी तुम्हारे आत्मीय ही हैं, क्योंकि वे नित्य रूप से कृष्ण से संबंधित हैं। तो ये है वास्तविक ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण से अपने नित्य संबंध को भूलकर जीव विषय भोगों की इच्छा करते हैं, इसी कारण से वे सब माया के भौतिक संसार के चंगुल में फंस जाते हैं। तो ये वास्तविक संबंध हमें जानना चाहिए कि सभी जीव भगवान के अंश हैं। इसीलिए ये बताया गया है कि वसुधैव कुटुंबकम। वास्तव में हमें इस मनोबुद्धि में रहना चाहिए कि हमारे वास्तव में सभी जीव जो है वो भगवान कृष्ण के अंश होने के नाते हम सबका आपसी संबंध है। तो ये जो हमारे आपसी संबंध जो हम मान रहे हैं माता पिता पुत्र पति पत्नी और सगे संबंधी के रूप में, ये संबंध तभी हम वास्तविक रूप में इनका सही प्रयोग कर रहे हैं यदि हम एक दूसरे को भगवान कृष्ण की प्राप्ति की दिशा में सहायता करते हैं। तो जो भी संबंध है हमको यही प्रयास करना चाहिए कि हम एक दूसरे को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाएं, तभी ये संबंध जो है वो सार्थक हो सकते हैं, अन्यथा ये सब संबंध जो है अनित्य हैं। तो इन संबंधों की सार्थकता तभी सिद्ध होगी यदि हम एक दूसरे को कृष्ण का अंश मानते हुए कृष्ण से जोड़ें। हमें ये मानना चाहिए कि सभी वैष्णव वैष्णवी हैं और इस मनोभाव से सबकी सेवा करनी चाहिए, सबको कृष्ण उन्मुख करने के लिए। माता पिता को अपनी संतान को कृष्ण भक्त बनाना चाहिए और जितने भी सगे संबंधी हैं उन सबको कृष्ण भक्ति से जोड़ना चाहिए। ये वास्तव में संबंधों का सही दृष्टिकोण है, तभी हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। यही प्रभुपाद जी हमें यहाँ पर बता रहे हैं। और आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस दृष्टिकोण को भूलकर हम सभी इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं। तो पतित जीवाओं का कष्ट क्या है? सभी जीव अपने कर्मों के फलानुसार अनेक प्रकार के शरीर रूपी वेश धारण करते हैं और भगवान श्री हरि को भूलकर उन्हीं वेशों में मग्न रहते हैं। भगवान से अपने संबंध को भूलकर हम अलग अलग प्रकार के वेश धारण कर रहे हैं शरीर रूपी, और इन्हीं वेशों में हम मग्न हो रहे हैं। इसी कारण से माया उन्हें अनेक कष्ट प्रदान करती है। उन दुखों के समुद्र में गोते खाते हुए भी जीव उन्हें सुख मानता रहता है, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा है कि हम दुख को भी सुख मानते हैं। तो यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वास्तविक ज्ञान के जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये ज्ञान का लक्षण है कि हम जाने कि इस संसार में कष्ट है, इस संसार में जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा ये सब कष्ट है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। तो आगे प्रभुपाद जी एक व्यंग्य करते हैं। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चिर रोगी दुख भोगी शैया ते सुइया भालो आची आज कहे हासिया हासिया। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि बहुत समय से चिरकाल से रोगग्रस्त होकर जीव दुख भोगता हुआ भी शैया पर लेटे हुए हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है कि आज मैं बहुत अच्छा हूं। कोई व्यक्ति है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, पूरा उसके प्लास्टर लगा हुआ है और दूसरे लोग मिलने जाते हैं उससे, तो पूछते हैं आप क्या हैं, कैसे हैं, क्या हाल है, तो बोलता है मैं अच्छा हूं। तो ये वास्तव में हंसने की बात है, प्रभुपाद जी हंस रहे हैं इस बात पे। हासी पाए तार भालो थाकार कथाए माया बद्ध जीवेर भालो एई भावे भावे है। मैं अच्छा हूं उसकी इस बात पर मुझे हंसी आती है। माया के जाल में बंधे हुए जीव को अच्छा होना इसी प्रकार का होता है। तो एक व्यक्ति बीमार है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है लेकिन वो बोल रहा है कि मैं अच्छा हूं, तो ये वास्तव में हंसी की बात है। तो उसी प्रकार से हम सभी जीव माया से बंधे हुए हैं और माया के प्रभाव से हमने ये भौतिक शरीर प्राप्त किया है और जिसमें हम जन्म मृत्यु बीमारी और बुढ़ापा इन कष्टों को भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं कि हम सुखी हैं, ये वास्तव में हंसी की बात है प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि सुख में जीवन की योजनाएं, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि वे इस संसार में सुखमय जीवन बिताने के लिए कितनी सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन भौतिक प्रकृति उनकी सभी योजनाओं को बारंबार भंग कर देती है। सभी ये प्लान करते हैं कि हम किस प्रकार सुखी हो जाएं, ये योजना वो योजना, लेकिन माया शक्ति जो है वो सभी प्लान भंग कर देती है। भगवान कृष्ण की दिव्य माया शक्ति तीन गुणों से युक्त है। हे भाई, तुम माया के जगत में भली भांति तथा कथित अच्छा होने या सुखमय जीवन का वास्तविक अर्थ समझो। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दैवी एशा गुणमयी भगवान एर माया भालो थाकर अर्थ भुज भालो करे भाया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हे भाई, तुम बोल रहे हो कि मैं अच्छा हूं, लेकिन ये अच्छा होने का वास्तव में अर्थ तुम समझ लो, वास्तव में क्या अर्थ है इसका। कहे भालो नाई है था तबु भालो बोले एई भावे माया सब बद्ध जीवे छले। इस संसार में कोई भी जीव सुखी नहीं है, फिर भी वह कहता रहता है मैं अच्छा हूं। इस प्रकार माया सभी बद्ध जीवों से छल करती है। अपने स्वरूप को भूलकर जीव माया के छल द्वारा सदैव संसार में रमा रहता है। माया सुख के लिए वह अपने कष्ट प्राप्त कर अनेक कष्ट प्राप्त करता है, फिर भी वह माया के साथ संबंध को भूलता नहीं है। बार बार जीवात्मा योजनाएं बनाता है और माया उन्हें बारंबार भंग कर देती है। कभी वह जमीन पर गिर जाता है और कभी कीचड़ में गिर जाता है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एई रूप ब्रह्मांड भरी जीव करे भ्रमण, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति नित्य धन। तो इस प्रकार जीवात्मा माया के अज्ञान में वशीभूत होकर असंख्य ब्रह्मांडों में भ्रमण कर रहे हैं। तो लेकिन सौभाग्यवशात उसे क्या मिलता है, गुरु कृष्ण कृपाए पाए भक्ति नित्य धन। उसे इस प्रकार जीवात्मा असंख्य ब्रह्मांडों में भ्रमण अर्थात देहांतरण करती रहती है तथा आध्यात्मिक गुरु एवं भगवान कृष्ण की कृपा द्वारा ही भक्ति रूपी नित्य धन प्राप्त किया जा सकता है। सही धन मिले यदि आर धन छाड़े, अनायासे चले जाए संसारेर पारे। यदि जीव को भक्ति रूपी धन प्राप्त हो जाता है तो वे भौतिक धन का त्याग कर देते हैं और फिर सरलता से ही वे संसार के चक्र से पार जा सकते हैं। तो यहां पर बताया कि सही धन मिले यदि आर धन छाड़े। तो हमें अभी इस संसार में कुछ रस प्राप्त हो रहा है, कुछ सुख प्राप्त हो रहा है, कुछ लाभ प्राप्त हो रहा है, इसी कारण से हम इस संसार की आसक्ति को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ तो सुख मिल रहा है इसीलिए हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन इस सुख से के साथ में बहुत सारे दुख भी जुड़े हुए हैं। हमें बीमारी मिल रही है, बुढ़ापा मिल रहा है, कष्ट मिल रहा है और बहुत अलग अलग प्रकार के मनो उद्वेग मिल रहे हैं। जैसे आप बताया तात्पर्य में कि उसे अपनी पत्नी और संतानों से कभी सुख की प्राप्ति होती है, कभी हर्ष की प्राप्ति होती है और कभी उद्वेग की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति होती है। तो अलग अलग प्रकार के हमें सुख और दुख के मनोभाव प्राप्त हो रहे हैं संसार के संबंधों से, लेकिन फिर भी हम उस संबंधों से मुक्त नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि कुछ रस, थोड़ा सा एक अल्प रस प्राप्त हो रहा है, लेकिन जब हमें भक्ति का रस प्राप्त होगा तभी हम ये जो भौतिक रस का जो आकर्षण है, जो आसक्ति है, इससे हम मुक्त हो सकते, इसका हम त्याग कर सकते हैं। सही धन मिले यदि आर धन छाड़े, जब हमें भक्ति का धन प्राप्त होगा तभी हम इस भौतिक आसक्ति के जो आकर्षण है इसको त्याग कर सकते हैं। इसीलिए बताएगी वासुदेवे भगवती भक्ति योग परियोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहेतुकम। वास्तव में ये जो वैराग्य है, संसार से वैराग्य है, वो आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से जबरदस्ती करने से हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हमें भगवान वासुदेव में भक्ति प्राप्त होगी। तो भक्ति प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, तभी हमें इस संसार से वास्तविक वैराग्य कर सकते हैं। एकदम जोर जबरदस्ती करने से हम एकदम से वैराग्य प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को ये शिक्षा देते हैं कि क्रमे क्रमे पाए से भव सिंधु कुल, क्रम अनुसार ग्रेजुअली ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप आप भक्ति भगवान इस जीवन से वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं और भव सागर से पार हो सकते हैं। तो प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं, भव पारे अच्छे चिद वैचित्र्य अपार, नित्य शांति नित्य सुखे करय विहार। भौतिक जगत से परे असीमित शुद्ध चेतना की विविधता से पूर्ण आध्यात्मिक जगत है, वहां सभी जीव नित्य शांति और नित्य सुख से आनंद पूर्वक रहते हैं। तो ये आकर्षण हमें जगाने का प्रयास करना चाहिए, यही हमें साधु गुरु शास्त्र बता रहे हैं। ये लोभ हमें प्रदान कर रहे हैं, जो बताया गया है कि भगवान स्वयं बता रहे हैं कि भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है वो कैसा है, और भगवान के आध्यात्मिक चिन्मय जगत में भगवान उनके भक्त किस प्रकार नित्य संबंध में आपस में दिव्य लीलाएं करते हैं और दिव्य रसों का आस्वादन करते हैं, आनंद प्राप्त करते हैं। ये आकर्षण, ये लोभ जब हम अपने हृदय में जागृत करेंगे तभी हम इस संसार के आकर्षण से मुक्त हो सकते हैं। तो ये विचारधारा प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं अपने कविता में, अपने मनोभाव के माध्यम से। तो हमें इसे समझने का प्रयास करना चाहिए और इस पर विचार करना चाहिए ताकि हम ये भाव जागृत कर सकें और भक्ति जीवन के लिए गंभीर हो सकें। हरे कृष्णा, धन्यवाद। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। सभी वैष्णव वैष्णवियों की जय। हरे कृष्ण।